आठवां चैप्टर रोमन इतिहास लेखन परंपरा रोमन ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। यूनानियों द्वारा रोम के विजय के परिणाम स्वरूप दोनों देशों का पारस्परिक संबंध प्रगाढ़ हुआ। यूनानियों की श्रेष्ठ संस्कृति से रोमन संस्कृति प्रभावित हुई। रोमन वासियों ने यूनान से विविध क्षेत्रों में ज्ञान ग्रहण किया। रोमन इतिहास लेखन भी यूनानियों की देन है। रोम पर यूनानी प्रभाव इतना गहरा था कि वहां की अनेक परंपराओं को लेखक यूनानी भाषा में अनुदित करने लगे। पोलिबियस, कार्नेलियस, डायोडोरस, निकोलस, प्लूटार्क, एपेयन आदि ने यूनानी प्रभाव से ही रोमन इतिहास लेखन कार्य किया। कतिपय विद्वानों का कथन है कि रोमवासियों ने इतिहास लेखन के क्षेत्र में कोई नया योगदान नहीं दिया। इसी कारण था कि दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक रोमन ऐतिहासिक ग्रंथ यूनानी भाषा में लिखे जाते थे। इससे यह प्रमाणित होता है कि रोमन लेखक यूनानियों पर कितने निर्भर थे। यद्यपि रोमन इतिहास लेखक यूनानियों से अत्यधिक प्रभावित थे, परंतु अपने सार्वभौम साम्राज्य के निर्माण प्रक्रिया में रोमन विद्वानों ने भी इतिहास लेखन में अपना योगदान दिया है, जो मौलिक भी है। रोमन इतिहास लेखन परंपरा का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण आवश्यक है। फेबियस पिक्टर, इनका जन्म लगभग 254 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसे प्रथम रोमन इतिहासकार माना जाता है। इसने अपने ग्रंथ हिस्ट्री में एनिज के काल से अपने समय तक के रोम की कथा लिखी है। अपने विवरण के लिए इसने अपने परिवार में पड़े हुए आर्काइव्स के कार्यालयी डॉक्यूमेंट्स से सहायता ली, परंतु उसने अपने इतिहास में सामान्य जनों की उपेक्षा किया है और मात्र अभिजात वर्ग का चित्रण किया है। एम्पोरसियस कैटो, इसका जन्म लगभग 234 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इन्होंने अनेक शासकीय पदों पर अनुभव प्राप्त किया। इनकी 7 भागों में लिखित प्रसिद्ध कृति और ओरिगिनिस है, जिसे एक राष्ट्रीय ग्रंथ माना जाता है। कैटो ने अपने इतिहास ग्रंथ को मात्र राजनीतिक घटनाओं तक ही संकुचित रखा और समाज जीवन की पूर्ण उपेक्षा किया है। एल कोएलियस एंटीपेटर, इसने अपने विषय के लिए द्वितीय प्यूनिक का चुनाव किया। अपने इतिहास लेखन के लिए इसने केबियस पिक्टर तथा कैटो आदि लेखकों के साथ ही साथ ग्रीक तथा लातानी लेखकों की रचनाओं से पर्याप्त सहायता ली। बारो, इसका जन्म लगभग 116 ईसा पूर्व में हुआ था। इन्होंने राजनीति में विशेष भाग लिया। 47 ईस्वी पूर्व में इन्होंने 41 भागों में अपनी प्रसिद्ध कृति रोमन एंटीक्विटीज प्रकाशित किया। इसमें से 25 भाग इन्होंने मानवों को समर्पित किया और 16 भाग देवताओं को। परंतु इन्होंने अपने इतिहास लेखन में विभिन्न तथ्यों से संबंध स्थापित करने में सफलता नहीं प्राप्त की। इनके पुस्तक के अधिकांश भाग विलुप्त हैं, मात्र धार्मिक भाग उपलब्ध हैं। जूलियस सीजर 100-244 ईस्वी पूर्व, इसने प्राचीन विश्व का उत्तम हिस्टोरिकल मेमोरीज लिखा, जिसका नाम कॉमेंट्रीज ऑन द वार्स एंड द सिविल वार है। इस ग्रंथ में इन्होंने युद्ध के विवरण के साथ ही साथ लोगों की परंपराओं और प्रथाओं का भी वर्णन किया है। सीजर अपने वर्णन में सदा स्पष्ट, गतिशील तथा सीधा कहने वाला था। प्रोफेसर वार्नस का कथन है कि हिज कमेंट्रीज आर ऑलमोस्ट एज इम्पॉर्टेंट फॉर आवर नॉलेज ऑफ प्री रोमन ग्यूल एज इज ट्रिक्यूटस जर्मनिया फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट प्री रोमन जर्मनी। जी सेल्यूस्टियस क्रिस्थस 86-34 ईस्वी पूर्व, यह थियुसडाइडीज का शिष्य था तथा रोमन इतिहासकारों में अधिक व्यवस्थित था, यद्यपि उसकी प्रमुख कृति हिस्ट्री ऑफ रोमे 78 से 67 ईस्वी पूर्व तक की विलुप्त है, परंतु उसका कॉन्सिप्रिकी ऑफ कैटिलाइन तथा ग्यूरिथियन बार एवं मोनोग्राफ्स उसके राजनीतिक शक्ति तथा व्यक्तियों के विश्लेषण की क्षमता को प्रकट करते हैं, परंतु उसने अपने ऐतिहासिक विवेचन में तिथि क्रम और भूगोल की उपेक्षा की है। टी लिवी 59 ईस्वी पूर्व से 71 एडी, रोम के शासक सीजर की हत्या के पश्चात रोम में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। इस गृह युद्ध में अगस्तस की विजय हुई और शांति स्थापित हुआ। शांति काल में पुनः साहित्य लेखन प्रारंभ हुआ और 27 ईस्वी में लिवी के इतिहास का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ। लिवी के ऐतिहासिक योगदान का संक्षिप्त परिचय अनुलिखित पंक्तियों में ध्यातव्य है। जीवन परिचय। रोम के पडुआ नामक स्थल पर लिवी का जन्म 59 ईसा पूर्व में हुआ था और 71 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। लिवी ने अपने समय के गणतंत्र को देखा था। सीजर के एक तंत्र की घटनाओं का स्मरण उसे था। उन्होंने रोमन ग्रंथ का विघटन, रोमन साम्राज्य की स्थापना और अगस्तस के युग का चरमोत्कर्ष अपनी आँखों से देखा था। वे रोम में वर्जिल और होरेस की तरह अगस्तस की सभा के रत्न बन गए थे। अगस्तस के संरक्षण में इन्होंने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। इनका विश्वास था कि स्वर्ण युग का दिव्य विहन विश्व को उद्भासित कर रहा है। उन्हें रोम की महत्ता और विशालता में अटूट श्रद्धा थी। उनके लिए उसके विश्वव्यापी साम्राज्य का प्रतीक सम्राट एक देवता अर्थात दिवस था। इनका इतिहास इटली में एनिस के आगमन से आरंभ होकर 9 ईस्वी तक चलता है। इतिहास है कि लिवी अपने ग्रंथ को अगस्तस के राज्यपाल के अंत तक ले जाना चाहते थे। यह महान ग्रंथ धीरे धीरे लुप्त हो गया। इतिहास लेखन। लिवी ने अपने इतिहास की प्रस्तावना में रोमन इतिहास को 2 भागों में बांटा है, पहला प्राचीन काल, दूसरा अर्वाचीन काल। पोम्पे और सीजर के युद्ध से प्रथम काल का अंत और दूसरे का आविर्भाव हुआ। उनका विचार रोमन जाति का संपूर्ण इतिहास लिखने का था। वे इतिहास को अलंकार शास्त्र का अंग समझते थे, अतः उनकी शैली पुष्पित सज्जित और प्रवाहमयी है। उनके मतानुसार इतिहास का उद्देश्य नैतिक आदर्शों की शिक्षा देना और देश प्रेम के भाव को दृढ़ करना है। लिवी की कृतियाँ। प्रोफेसर साटवेल ने लिखा है कि लिवी की संपूर्ण कृतियाँ 42 भागों में लिखी गई, परंतु दुर्भाग्य से 35 भाग ही आज उपलब्ध हैं। रोम का यह दुर्भाग्य रहा कि वह लिवी के इतिहास के संपूर्ण भाग को सुरक्षित न रख सका। उसने भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को दृष्टि में रखकर इतिहास लिखा। इन्होंने रोम का राष्ट्रीय इतिहास लिखा। रोम के उत्थान का विवरण लिखने में उनका उद्देश्य रोम की प्रशंसा करना और अपने राष्ट्रीय गौरव को प्रस्तुत कर नवयुवकों में देशभक्ति की भावना भरना है। उन्होंने अलौकिक तथ्यों को पुनः अपने विवरण में प्रतिशोध की भावना से स्थान दिया। पुनः देवताओं के हस्तक्षेप को इतिहास में स्थान दिया। तथ्यों के प्रति उसका ध्यान था तथा कल्पित कथाओं को त्यागने का प्रयास नहीं किया। लिवि का मूल्यांकन। प्रोफेसर कलिंगवुड का अभिमत है कि लिवि ने रोम के परंपरागत इतिहास की निरंतरता को बनाए रखा। लिवि की इतिहास लेखन शैली अत्यंत रोचक है, परंतु उसमें आलोचनात्मक शक्ति का अभाव दिखाई देता है। लिवि के युद्ध में त्रोगस पोम्पियस फेनेस्टेला हाइजीनियस कालपुर्नियस बोलुमनियस मार्थस अकंतिस और लिसिवियस आदि ने भी इतिहास लेखन में बहुमूल्य योग दिया, किंतु ऐतिहासिक साहित्य का यह उमड़ता हुआ स्रोत शीघ्र ही रुक गया, विचार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह वातावरण 96 ईस्वी तक रहा। पी कार्नोलियस टैसीटस 54 से 54 to 120 ईस्वी पूर्व। प्रसिद्ध इतिहासकार शेख अली का मत है कि रोमन इतिहासकार में यदि लिवि हेरोडोटस के समान है तो टेसिटस यूनानी थिसडाइडस के समान है। जीवन चरित्र। रोम का सबसे महत्वपूर्ण इतिहास लिखने वाले टेसिटस का जन्म 54 ईस्वी में तथा और मृत्यु 120 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने कानून का अध्ययन किया, परंतु वेस्पेसियन के राजकाल में वे राजकार्य में प्रविष्ट हुए और 88 ईस्वी में प्रीटर तक बन गए। रोम के गौरव से वे अत्यधिक प्रभावित थे। कृतियां। एक इतिहासकार के रूप में टैसिटस की अनुलिखित कृतियां प्रसिद्ध है। पहला अग्रिकोला का इतिहास, दूसरा जर्मानिया, तीसरा हिस्तोरे, चौथा अनाल। वे अपने ही वाक्य पात्रों से कहलाने लगते हैं कि उनकी ये सभी कृतियां एक व्याख्याता की शैली में लिखी गई है। व्याख्या एवं स्वरूप। टेसिटस के इतिहास लेखन में उनकी दार्शनिकता और व्यक्तिकता झलकती है। वे सम्राटों के आलोचक थे, राजशाही पर छींटे कसते थे। उन्होंने जर्मानिया में जर्मन संस्थाओं का अध्ययन करके जर्मन लोगों के स्वतंत्रता प्रेम और व्यक्तिवाद का आदर्श प्रस्तुत किया और रोम के एक तंत्र प्रतिबंध और पराधीनता के वातावरण का व्यंग रूप से विरोध किया। टेसिटस में वह विस्तृत दृष्टिकोण नहीं मिलता जो पोलिबस की विशेषता है। वे रोम के आंतरिक मामलों में ही उलझे रहे। सीनेट के दल के प्रति उन्हें बड़ा पक्षपात था। शांतिपूर्ण व्यवस्था से उन्हें घृणा थी। युद्ध और विजय में उन्हें आनंद मिलता था, किंतु युद्ध शास्त्र से वे पूर्णतः अपरिचित थे। उनका चरित्र चित्रण भी कृत्रिम और काल्पनिक था। वे पुण्य और पाप का निदर्शन प्रस्तुत करना चाहते थे, अतः उनके पात्र मूर्तिवत हो गए हैं, उनमें सजीवता नहीं है। अग्रिकोला और डोमितियन ऐसे ही परिपूर्ण निर्जीव आदर्श हैं जैसे ग्लोकोन ने सुक्रतु के सामने प्रस्तुत किए थे, जिनकी पूर्ण अच्छाई और पूरी बुराई को देखकर उस महान एथेनियन दार्शनिक ने उन्हें कहा था कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुम किसी पारितोषिक प्रतियोगिता के लिए मूर्तियों पर जमकर पॉलिश कर रहे हो। ये आदर्श जीवन चरित्र की विविधता से कोसों दूर है और परिस्थितियों के संदर्भ से बिल्कुल पृथक है। ऐसे चरित्र चित्रण में ऐतिहासिकता नहीं होती, क्योंकि ये अस्थायी आदर्शों के प्रतीक होते हैं, गतिमान जीवन के प्रतिबिंब नहीं होते। इतिहास लेखन पद्धति। टेसिटस के इतिहास लेखन पद्धति के संबंध में प्रोफेसर कलिंगवुड ने लिखा है कि उन्होंने 5वीं शताब्दी के यूनानी पद्धति का अनुसरण किया है और उसी आधार पर उन्होंने रोम के युद्धप्रिय और युद्ध सेनापतियों की प्रशंसा में अधिक लिखा है जो तथ्यात्मक प्रमाणों से मेल नहीं खाता। इसी प्रकार प्रोफेसर सार्टवेल का कथन है कि टेसिटस ने अपने युग की घटनाओं के संबंध में तथ्यों का अधिक संकलन किया है। यह एक प्रशंसनीय कार्य है, परंतु तथ्यों के विश्लेषण में अपने साहित्यिक और दार्शनिक प्रतिभा के कारण समालोचनात्मक व्याख्या नहीं कर सके। तथापि इतिहास लेखन में टैसिटस ने अपने युग के महान पुरुषों के भी त्रुटियों की स्पष्ट समीक्षा किया है, निर्भयता पूर्वक उनके दोषों का उद्घाटन भी किया है। रोम के इतिहासकारों में टैसिटस महत्वपूर्ण इतिहासकार के रूप में इसीलिए स्मरण किया जाता है क्योंकि उसने अपने इतिहास लेखन में अपने युग के सत्ताधीशों की भी आलोचना की है। टैसिटस की यह मान्यता रही कि अच्छे व्यक्तियों की उपलब्धियों का प्रशंसात्मक विवरण प्रस्तुत करना ही श्रेष्ठ इतिहासकार का कर्तव्य है और बुराइयों का विरोध करना चाहिए। यद्यपि अपने जन्मनेका नामक ग्रंथ में उसने स्वयं इसका पूर्ण निर्वाह नहीं किया है। इसी परंपरा में स्वेटोनियस ने इतिहास लेखन का कार्य किया, परंतु यह इतिहास परंपरा का पतन का काल था, जिसका प्रतिबिंबन स्वेटोनियस की कृतियों में होता है। उनकी 92 सम्राटों की जीवनी बहुत प्रसिद्ध है। इनमें सीजर्स से 2 मिनियसन तक प्रत्येक सम्राट का जीवन चरित्र का वंश परिचय, शिक्षा दीक्षा, आकृति प्रकृति जीवन निधन आदि दिया हुआ है। वस्तुतः यह ग्रंथ इतिहास का नहीं अपितु जीवन चरित्र का निदर्शन है। रोमन साम्राज्य के अंतिम इतिहासकारों में वांटो और सेवेरी हैं। ब्रोंटो ने वेरस के पूर्वी अभियान का वृत्तांत लिखा है। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ प्रिंसिपिया हिस्टोरे महत्वपूर्ण है, जो हिस्टोरिया अगस्टा शीर्षक में विलीन हो गई है। इस संग्रह में जीवनियां परिमार्जित रूप में प्रस्तुत है। इसी प्रकार रोम के अन्य इतिहासकारों ने भी जीवनी, धर्म, नीति, विज्ञान, अंधविश्वास आदि से समन्वित इतिहास लिखा है। रोमन इतिहास लेखन पर यूनानी प्रभाव रहा, इसीलिए इसे यूनानी रोमन इतिहास दर्शन की संज्ञा दी जाती है। इस परंपरा के अंतर्गत इतिहासकारों ने मानवतावाद, मानवीय कार्यकलाप की चित्रित करने का प्रयास किया है। यूनानी रोमन इतिहास दर्शन में अस्थायी तत्वों की प्रधानता थी और इतिहास को राजनीतिक प्रशिक्षण की पाठशाला समझा जाता था। इससे पेराक्लीन जैसे राजनीतिज्ञ को दीक्षा मिली थी, परंतु कालांतर में पोलिबस ने यह मत व्यक्त किया कि इतिहास का अध्ययन बाह्य सांसारिक सफलता का माध्यम नहीं है, वरन आत्मविजय और आंतरिक संतुलन का साधन है। यूनानी नीतिशास्त्र का यह महान परिवर्तन पोलिबस की रचनाओं में दृष्टिगत होता है। उपर्युक्त हेलेनिक विचारधारा के परिवर्तन का एक दूसरा परिणाम यह हुआ कि इतिहासकार की दृष्टि संकीर्ण परिस्थितियों से हटकर संपूर्ण विश्व में फैल गई। अस्टोइक और एपिक्यूरियन विचारक विश्व भ्रातृत्व के अनुयायी थे। जैनों ने अपनी रिपब्लिक में, जो अब लुप्त हो चुकी है, एक आदर्श व्यवस्था की एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी। रोम के उत्कर्ष में इस दृष्टिकोण को बहुत बढ़ावा दिया। फलतः इतिहासकार जातिवाद से ऊपर उठकर विश्वव्यापी मानववाद का अनुयायी हो गया। उसके लिए संसार और नगर में कोई भेद न रहा, परंतु सामान्य रोमन नागरिक इतिहास के प्रति सतर्क नहीं था। हेरोल्ड मेटिंगली के शब्दों में, रोमन नागरिक को काल की बहुत कम अनुभूति थी, अतः यद्यपि इतिहास उपयोगी, शिक्षाप्रद और मान्य समझा जाता था, यह एक विशुद्ध बौद्धिक कीड़ा रह गया था। एक मृत विज्ञान बन गया था। रोम के पतन के साथ ही यूनानी रोमन इतिहास लेखन की परंपरा का भी हास्य हो गया, परंतु यूनानी इतिहास लेखन की परंपरा ने कालांतर के इतिहासकारों को प्रभावित किया। समाप्त।